कल्पना बेन, इंस्टेंट मेथड,
माया की कैद,
कैद, प्रिजन ऑफ माया।
ओम शांति। तो टॉपिक है माया की कैद। बाबा हमें ये स्मृति दिलाते हैं कि दो युग आप माया की कैद से मुक्त रहे और अभी दो युग से आप माया की कैद में हो। तो माया की कैद क्या है? ये जो पांच विकार हैं हमारे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों के जब हम लोग अधीन हो जाते हैं, हम करना कुछ और चाहते हैं लेकिन इन विकारों के अधीन होके हमें वो करना पड़ता है जो वो हमसे कराना चाहते हैं। जैसे कैद में जब इंसान होता है तो उसकी अपनी मर्जी नहीं चलती है, उसको वही करना पड़ता है जो, जैसे दुनिया की कैद में भी जो कैदी होता है उसको वहाँ के जो जेलर होते हैं वो लोग जैसे इंस्ट्रक्ट करते हैं, जो वहाँ पे काम देते हैं, चाहे आपने पहले वो काम कभी नहीं भी किया, आपको वो करना पड़ता है। तो ऐसे ही हम लोग भी जब माया की कैद में आ जाते हैं तो ये पांच विकार जो है हमारे, एक तरह से जेलर बन के हमसे वो काम कराते हैं जो हमने कभी नहीं किया। तो द्वापर युग से जब माया की कैद शुरू हुई तो पहले तो हमारा फिर भी थोड़ा कंट्रोल था अपने ऊपर, विकार तब से आने शुरू हो गए थे लेकिन विकारों ने हमें उतना अपने अधीन नहीं किया था। लेकिन जैसे जैसे हमारी अपनी शक्तियां कम होती गई, हमारे अपने गुण कम होते गए, तो इन विकारों ने हमें अभी अपने पूरे कंट्रोल में कर लिया है। तो अभी क्या होता है, हम हर चीज के लिए ऐसे कहते हैं कि हम ये करना नहीं चाहते थे लेकिन हमने कर दिया। कई बार गुस्सा करने के बाद भी मन में ये आता है कि करना नहीं चाहते थे पर कर दिया, जिसे एक महसूसता खुद को अंदर से आती है कि हम इस माया की कैद में हैं, हम वो कर रहे हैं जो हमसे कोई कर, ये हमसे ये बुराइयां करवाना चाह रही है। तो माया की कैद को तो हम लोगों ने समझ लिया, अभी परमात्मा हमें इन कैद से मुक्त होने की भी युक्तियां बताते हैं कि जितना जितना आप अपने ओरिजिनल गुणों को जागृत करते रहोगे, जो शांति, प्रेम, पवित्रता, जो आत्मा के साथ ओरिजिनल गुण हैं, जितना हम उन्हें जागृत करते रहेंगे उतना ये जो माया की बुराइयां या जो विकार आए हैं ये अपने आप पीछे हटते जाएंगे। क्योंकि जो हमारे ओरिजिनल गुण हैं वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं और ये जो माया की अवगुण है या माया की कैद है उनकी शक्ति उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो जितना ओरिजिनल गुण हमारे अंदर जागृत होते जाएंगे, जैसे शांति का गुण है, शांति का गुण जितना अंदर में बढ़ता जाएगा क्रोध का अपने आप पीछे जाता रहेगा, क्रोध को पीछे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शांति को यूज करते रहेंगे तो क्रोध का अवगुण अपने आप पीछे जाता रहेगा। तो अभी हमारा फोकस इस चीज पे नहीं होना चाहिए कि कैसे हमको इन बुराइयों को हटाना है, हमारा फोकस इस पे होना चाहिए कैसे अपने ओरिजिनल गुणों को जागृत करना है। ओम शांति।
नेक्स्ट सुशील भाई, आज की मुरली से संगम युग की मार्केटिंग कैसे करें? ना, कैसे करें? आज बोला ना, एडवर्टाइज करो।
ओम
मार्केटिंग के क्या प्रिंसिपल्स उधर अप्लाई किए जाते हैं वो इधर, संगम युग की मार्केटिंग
मार्केटिंग में बहुत सारे प्रिंसिपल होते हैं। जब व्यक्ति जाता है पहले उसके अनुभव उसके पास होते हैं मार्केटिंग में भेजने के लिए, जो अच्छा सेल्समैन होता है उसको जब भेजा जाता है तो उसके उसको परखने की बहुत जरूरत पड़ती है कि कौन सी दुकान में जाना है, किस बिजनेस मैन के पास जाना है, कौन सी मार्केट में ये सामान खप सकता है वहां। तो ये सारे मार्केट के प्रिंसिपल है। उसी तरह संगम युग के जो प्रिंसिपल हैं उन प्रिंसिपलों को अगर हम अच्छी तरह समझेंगे पहले तो हम दूसरों को समझा सकते हैं। जैसे वो मार्केटिंग में भी प्रिंसिपल को पहले खुद समझना पड़ता है अच्छी तरह से, कैसे कस्टमर के सामने चीज को रखना है, उसके हाव आपको परख के कैसे हम 100% उसके नहा धो के पीछे पड़ के उसको सामान थोपी दें। हमको याद है जब हम सर्विस करते थे तो कस्टमर जब आते थे तो लक्ष्य तो था उसको सामान जैसे तैसे करके देना ही है। जब वो कहते थे हमारी पॉकेट में पैसे नहीं है तो हम कहते थे पैसे मांगे किसने आपसे, पैसे की तो बात ही नहीं है ना, आपको चीज पसंद है कि नहीं पसंद है? तो वो कहते चीज तो हमको पसंद है, हम कहते थे आपको घर में रख देंगे, आप जब मर्जी पैसे दे देना। तो सामने वाला व्यवहार से इतना वो प्रभावित हो जाता है कि ऑटोमेटिकली हाँ ठीक है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे अपना जब हम उसको बना लेते हैं तो स्वतः जो हमारा व्यवहारिकता है वो सामने वाला उस व्यवहारिकता के कारण अपने आप ही इंस्टॉलमेंट्स के जरिए सीधा डायरेक्ट दे देता फिर, क्योंकि फ्यूचर में उसको सर्विस भी लेनी होती है तो बीच बीच में उसको बताया जाता है कि सर्विस भी उसके उपलब्ध कराने के तरीके भी कौन से है, जब आप ही दुकानदार के साथ ठीक से डीलिंग करेंगे तभी आपको सर्विस भी ठीक से मिलेगी। तो इस तरीके से हमारी व्यवहारिकता जो है संगम युग की मार्केटिंग के लिए वो बहुत मायने रखती है, क्योंकि सामने वाले जो हम संगम युग के बारे में समझाएंगे तो पहले वो हमें भी देखेगा कि क्या इनके जीवन में संगम युग के जो गुण हैं, जो ईश्वरीय खजाने हैं, क्या वो हमारे जीवन में प्रैक्टिक रूप से झलक रहे हैं, तो हम संगम युग की मार्केटिंग को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जो भी बाबा ने हमको ईश्वरीय खजाने दिए हैं, ज्ञान गुण शक्तियां हैं, उन खजानों को स्वयं में जितना समावेश करेंगे, आचरण में लाएंगे, समाहित करेंगे तो स्वतः सामने वाले का लेने के लिए अपने आप उत्सुक होगा। और हर आत्मा आज प्यासी है इन चीजों की, उन चीजों की आवश्यकता है जिसके लिए दर दर भटक रहे हैं, चाहे वो भक्ति काल में है चाहे ज्ञान काल में भी। हर एक आत्मा की यही मंशा रहती है कि किसी न किसी तरीके से हम इस चीज में पारंगत बनते जाएं। तो संगम की मार्केटिंग के लिए हमको इन चीजों से बहुत गहराई से हमें अपने जीवन में आचरण में लाने की अति आवश्यकता है, तो हम बाबा की आशाओं को भी बेहतर तरीके से प्रत्यक्ष रूप से सबके सामने रख सकेंगे और उनको भी बाबा का बारिश बना सकेंगे। तो इस तरह से संगम युग की मार्केटिंग को हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ओम शांति।
अल्दर भाई आज के मुरली से सुदामा के चावल।
ओम शांति। दाता वर दाता आया है हम सबको देना सिखाने। कितने जन हम लेना शुरू कर दिए हैं, ये सोचते कि हम लेते रहे दूसरों से औरों से, देना ही भूल गए थे, और देने में क्या मिलता है वो भी भूल गए थे, वो हम सबको याद दिलाया करके। और देने में जो सुख है वो लेने में नहीं है। माताएं सारे अनुभवी हैं, बहनें माताएं, खिलाने में जो आनंद है, जो खुशी है, वो ज़्यादातर भाइयों को कम है। लेकिन अगर कोई कभी खिलाया है किसी को तो उसको अनुभव है कि खिलाने में, आगे बढ़ाने में, कुछ सिखाने में जो खुशी है, जो आनंद है, ये दातापन है। देते चलने से जितना अपने पास है वो बढ़ता जाता है, खुशी कहो, ज्ञान कहो, गुण कहो। तो इसलिए देने की भावना बाबा ने भरपूर मात्रा में हम सबको सिखाया है। तो इसलिए जितना हो सके अपने आप को भी दें। अपने आप को देना माना समय देना, साथ साथ तन मन धन जितना ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं उसके कई गुणा हम सबको प्राप्त होते हैं। ये थोड़े बहुत हम सभी अनुभवी हैं तो इसको आगे बढ़ाते रहें तो हमारे ये एग्जाम्पल देख करके औरों को भी प्रेरणा मिले। तो बाबा ने इसीलिए कहानी के रूप में सुदामा के मिसल भी सुनाते हैं। इस प्रकार कहानी बनाए हैं हम सभी को याद दिलाने के लिए। अगर दुनिया में इस प्रकार की उपनिषद कहो, पुराण कहो, शास्त्र कहो, अगर नहीं होता तो आज ये दुनिया और अधपतन की ओर चला जाता। तो ये सब एक हम सभी के लिए एक सिग्नल है कि हम को आगे बढ़ने का, और भगवान के करीब जाकर के हम सभी को सुख और शांति प्राप्त करने का और अपना समय सफल करने का। शांति। तो हम जानते हैं कि दाता तो एक ही है, लेकिन वो आकर के हम सबको दाता समान बना रहे हैं। जब लेना चाहते हैं तो क्या करते हैं, हाथ को इस प्रकार रखते हैं, देने वाले के हाथ ऐसे होते हैं। अगर इस प्रकार करते हैं तो क्या होता है, नीचे झुकना पड़ता है, और ऐसे करते हैं तो इसीलिए दादियां भी आज हम सबको क्या कर रहे हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं, लेने की भावना नहीं है। हम थोड़े बहुत भी सेवा करते हैं तो क्या करते हैं, थक जाते हैं, लेकिन दादियां अथक हैं, देना सिखाया है उन्होंने। बाबा ने जिस प्रकार दिया है, इतना प्यार दिया है दादियों को ताकि सारी दुनिया भूल के, तो इसीलिए हम भी ऐसे देते चलें और इस सेवा में, इस दातापन की सेवा में बिजी रहें तो माया आने का चांस ही नहीं हुए, तो इसीलिए माया से बचने का एक ही तरीका है, देते चलें। किस बातों से? अगर ज्यादा पैसे भी होता है तो माया आती है, तो इसीलिए उससे भी बचें। तो इसीलिए सफल करें समय को, संकल्प को, और साथ साथ स्थूल चीजें जो भी है हम सबको मिले। ओम शांति।
श्रद्धा बहन शबरी के बेर।
ओम शांति। शबरी के बेर, भक्ति मार्ग में शबरी के बेर का बहुत गायन है। रामायण में बताते हैं कि शबरी एक भीलनी थी और वो राम का बहुत इंतजार कर रही थी, और बहुत प्रेम था उसको राम से, इसलिए उसने कुछ था नहीं, भीलनी थी तो क्या खिलाए अपने राम को, इसलिए उसने जंगल से बेर इकट्ठे किए और उसमें भी उसने टेस्ट करके रखे कि कौन सा, कहीं कोई खट्टा बेर मेरे राम को ना मिले। तो जब राम और लक्ष्मण वहां जाते हैं तो वो अपने वो बेर प्रेजेंट करती है, उसको देती है, ऑफर करती है, जैसे हम भोग ऑफर करते हैं वैसे। तो जब वो देखता है लक्ष्मण की ये क्या है, ये सब झूठे बेर है और वो खिला रही है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन राम उसे बहुत प्रेम से स्वीकार करते हैं। फिर वो राम को पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, तो राम उसको जवाब देते हैं कि इसमें उसका प्रेम समाया हुआ है, यहाँ उसका समर्पण समाया हुआ है, इसलिए वो उसने स्वीकार किया। तो जैसे हम भी यहाँ बाबा को भोग ऑफर करते हैं तो हम लोग, सबको पता है, हम थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं पहले, कहीं बाबा को इसमें नमक कम ना हो, मिर्च कम हो। हालांकि भक्ति मार्ग में जब वो कोई खास भोग बनाते हैं किसी विशेष दिन का, तो उसमें नियम होता है, कोई जैसे श्राद्ध का बनाते हैं या कोई भी ऐसा करते हैं, तो उसमें टेस्ट करने की अनुमति नहीं होती है। और जो बहन बनाती है वो बड़े शुद्धता से, पवित्रता से उसको बनाती है, और उसको कहा जाता है कि उसको टेस्ट नहीं करना है, मतलब इतना कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए उसका, उतना उसका ध्यान होना चाहिए कि कहीं भी कुछ भी चूक ना हो जाए। और बाद में जैसे वो पंगत में या ब्राह्मणों को खिलाते हैं, तब उसको लास्ट में पूछा जाता है कि भोजन कैसा था। हमारे घर में जैसे वो हमारी माताजी ने शरीर छोड़ा था, तो लौकिक विधि से अनुसार भी कुछ करना पड़ा था हमें, तो फिर हमारी वो मासी थी, उन्होंने भोजन बनाया था, उनको ही बनाना था, हम लोगों को नहीं अलाउ था। तो लास्ट में वो ब्राह्मण को पूछा था कि भोजन कैसा था, तो उसने कहा था बहुत अच्छा भोजन था। तो समझा जाता है कि जिसके निमित्त वो भोग मतलब किया था, श्राद्ध या जो भी है विधि की थी, तो वो आत्मा तृप्त हो गई। तो यहाँ पे लेकिन वो सिस्टम नहीं है, यहाँ क्या है? हम बाबा के पास है और बाबा हमें बहुत प्यार करते हैं, तो अपने बच्चों का सब झूठा खाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो यहाँ बात आती है भावनाओं की बात आती है। तो कोई भी कार्य जब हम कोई भी सेवा करते हैं, किसी की भी सेवा करते हैं या किसी को खिलाते हैं, तो उन्हें बहुत प्रेम से, भावनाओं से, वो उसमें पूरी दिलो जान से मतलब वो काम करना चाहिए, पूरी समर्पणता के साथ करना चाहिए। इसलिए जैसे दादी जानकी कहती है कि वो खास सबको भोजन बना बना के खिलाती थी। क्यों भोजन बना के खिलाती थी? क्योंकि सब में उसमें इतना बाबा के प्रति भावना खुद के भी होती थी, तो दूसरे आत्माओं के भी वो भोजन करके उनमें उनकी बाबा में भावना बैठ जाती थी। तो इसलिए बहुत भावनाओं का बहुत महत्व है। हम लोग जानते हैं कि कई बाबा के बच्चे जो है वो केवल भोग खा के बाबा के बच्चे बने हैं। क्यों? क्योंकि भोग जब हम बनाते हैं, गुरुवार का भोग, तो हम बहुत प्यार से वो भोग बनाते हैं, बाबा को ऑफर करते हैं, तो उसमें बाबा की शक्ति भी भर जाती है। और वैसे भी भक्ति मार्ग में भी प्रसाद का बहुत महत्व होता है, तो उसमें भावना होती है। तो ये जो भावना है हमारे, न केवल भोग बनाने में या भोग खिलाने में हो, लेकिन जब भी हम बाबा को, जैसे हम भोजन करते हैं, यहाँ हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब भोजन थाली में लेते हैं तो भी उतने ही प्यार से हम बाबा को ऑफर करें, तो वो भोग भी भोजन भी शक्तिशाली बन जाता है। तो भगवान उसे बहुत प्रेम से स्वीकार करके हमारे अंदर बहुत शक्ति भर देता है। ओम शांति।
भोग नैवेद्य और प्रसाद में क्या अंतर है?
भोग नैवेद्य और प्रसाद में अंतर क्या है?
शंकर डांस, कल की मुरली, अव्यक्त मुरली।
ओम शांति।
बाबा कब खुश होते हैं? हाँ। बाबा कब नाचते हैं? जब बच्चे नाचते हैं तो बाप नाचते हैं। इसको भक्ति मार्ग में शंकर डांस कहा जाता है, उसके विषय में।
ओम शांति। टॉपिक है शंकर डांस। कल की मुरली में बाबा ने बोला कि जब बच्चे लोग उनका महिमा से गीत गाते हैं तब वो सुन के बाबा भी नाचते हैं। तो भक्ति मार्ग में ये वर्ड मैंने सुना है कि आनंद तांडव, तो वो तमिल में हम सुनते हैं आनंद तांडव, लेकिन कुछ अलग रीति से पहले मैंने सुनाया था कि जब शंकर थोड़ा गुस्सा हो गया तो वो आनंद तांडव करते, तो उस समय सब विनाश करते ऐसा। लेकिन सच में बाबा ने हम गीत गाते हैं, बाबा नाचते हैं, मतलब उसमें क्या है, बाबा का रूहानी प्रेम है, तो वो रूहानी प्रेम में बाबा नाचते हैं। तो हम भी क्या करना है, वैसे ही जब हमारा बाप हमारे सामने हमारा महिमा सुन के नाचते हैं, वैसे ही जब हम पूज्य स्वरूप में होते हैं हमारा भक्त लोग भी नाचने लगे, तो वैसे ही हम भी भक्त लोग भी हमारा गीत महिमा करते हैं, तो उस समय हम कैसे नाचना है, और बाबा भी हमारा महिमा भी गीत गाते हैं, तो हम भी उसके साथ नाचना है। तो नाचना माना खुशी होना, तो उस लगन में मगन होना वही है, वह फिजिकल डांस नहीं है, लेकिन वो अंदर का खुशी है उसमें हम नाचना है, उस ईश्वरीय नशे में चढ़ना है। तो यही शंकर का डांस है। ओम शांति।
आज की मुरली में है एक दो से रूठना, ये है माया, इस पर बोलना।
ओम शांति। जैसे लौकिक में एक दो से रूठते हैं तो एक दो को मनाना पड़ता है। यहाँ बाबा कहते हैं कि जो मुरली है वो बाबा से हम प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्लास में आते हैं, क्लास में से किसी से रूठ जाते हैं तो हम मुरली सुनना छोड़ देते हैं, क्लास में जाना छोड़ देते हैं, क्योंकि हम उस व्यक्ति को देखते हैं, लेकिन हमें बाबा को देखना है। बाबा कहते रूठे तो अपनी तकदीर भी रूठा, तो तकदीर को रूठना माना मुरली से रूठना माना बाबा से रूठना। तो हमारा जीवन में ऐसा ना हो कि कुछ भी हो जाए लेकिन मुरली से प्यार और मुरलीधर से प्यार होना चाहिए, और मुरलीधर से प्यार माना कुछ भी हो जाए लेकिन हमें किसी से भी रूठना नहीं है। अगर हम रूठते हैं तो हमारा मूड खराब हो जाता है, कोई काम में दिल नहीं लगता है, ये तो सभी को अनुभव होगा कि जब रूठते हैं तो दूसरे कितना भी कैसे भी काम करे, लेकिन ज्ञान मार्ग में तो हम आ गए हैं, तो हमें बाबा ने बहुत ज्ञान दिया है तो इसलिए हमको रूठना ही नहीं चाहिए। कोई कोई ऐसे होते हैं जो हमारे पीछे रहते हैं हाथ धो के और ऐसा काम भी करते हैं, और ऐसा लगता है कि रॉयल लगता है, कोई देखते हैं तो कि हम किसी को अगर बोले कि ये ऐसा करते हैं तो मानने तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि ऊपर से तो बहुत रॉयल होते हैं, अंदर से परेशान करते रहते हैं, तो उससे हम थोड़ा थोड़ा रूठे रहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये है हिसाब किताब खत्म करने की दुनिया है। बाबा ने कहा है अंतिम जन्म आपको जो दिया है उसमें हमारे आसपास जो भी मिलते हैं, जो भी कर्म करते हैं वो हमें सहयोग देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा अकाउंट है, अगर ऐसा परिवार ना मिले, ऐसे व्यक्ति हमारे साथ ना मिले तो बाबा को हमारा अकाउंट चुक्त करने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए हमको एक तो परिवार ऐसे देते हैं, दूसरी की हमको आसपास वाले ऐसे देते हैं, और जितना दर्द देते हैं उतना हमारा अकाउंट खत्म होता है। लेकिन हम अगर कोई हमको कुछ बोलते हैं और हम रूठते हैं या हम उसका जवाब देते हैं तो हमारा अकाउंट बहुत बढ़ जाता है, तो फिर चुक्त करने में बहुत, हमारे पास दूसरा जन्म तो है ही नहीं, यही जन्म में हमें चुक्त करना है। इसलिए हमें ध्यान रहना चाहिए कि जो भी आसपास कुछ भी करता है, तो अगर ज्ञान हमें रहता है कि ये व्यक्ति है मेरा अकाउंट सेटल करने में मुझे मददगार है, तो हम उससे रूठे भी नहीं रहेंगे। और कभी कभी कोई रूठते हैं लेकिन हम रूठते हैं लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम थोड़ा समझ करके सॉरी कर देते हैं या हम कुछ चुप रहते हैं, तो इसका इफेक्ट और ही अच्छा होता है। क्योंकि कोई बहुत ही तंग करते हैं लेकिन आप कुछ भी नहीं बोलो, अंदर बहुत कुछ आता है लेकिन बोलो ही नहीं, तो क्या होगा, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। अगर हम चुप रहते हैं तो व्यक्ति को फिर महसूस होता है कि अरे मैंने इतना तंग किया फिर भी व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया, तो वो फिर हमको कॉपी करने लग जाते हैं कि अभी मैं मुझे भी ऐसा नहीं करना है। तो हमें ऐसा व्यवहार करना है जो हमें लोग कॉपी करें, हम किसी को कॉपी नहीं करें।
कोई हमसे रूठता है तो क्या करें, हमने नहीं रूठा है, हमने कुछ किया नहीं फिर भी रूठते रहता है।
हमसे अगर
सेंसिटिव,
हाँ सेंसिटिव नेचर है तो हमें उसका ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। जैसे कोई माँ है उसका बच्चा है, उस कोई चीज ऐसी मांगते हैं तो बच्चे को बहुत प्यार से समझाते हैं, तो वो जो हमारे से रूठते हैं कोई भी कारण नहीं है, तो हमें उसके साथ ऐसा व्यवहार करना है कि उसको अंदर से लगे कि मतलब वो हमारे से खुश हो जाए। वो तो कर सकते हैं ना,
होता ही नहीं खुश, अब क्या कर।
इसलिए हमारे से कोई रूठता है तो बाबा ने बोला 5% तो माफ है, लेकिन एक बात और भी है, और भी
है,
थोड़ी एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार ऐसा है कि एक्चुअली क्या है कि जो भी हमारे व्हाट्सएप में जितने भी लोग हैं उसको आपने देखा होगा कि सभी हमारे से खुश नहीं रहते हैं, 40% खुश रहते हैं, 40% खुश रहते हैं, फिर 30% ऐसे होते हैं जो हम कितना भी कोशिश करें वो बहुत प्यार करें तो भी वो थोड़ा थोड़ा नाराज रहते हैं। उसको 30% में रखो, 20 ऐसे हैं हमारे पीछे ही होते हैं, हम कुछ भी करें तो कभी कभी अच्छा जवाब देते कभी नहीं भी देते हैं, उसको 30% में रखो, तो 20% में रखो, और 10% ऐसे हमारे पीछे ही होते हैं कि आप कुछ भी कहो, कुछ भी कितना भी आप उसके प्रति शुभ भावना रखो, कुछ भी करो, लेकिन वो फिर भी ऐसे नाराज रहते हैं और दुश्मनी करते हैं। तो हमको है ना, तो हमारे लिस्ट में रखना चाहिए 10% वाले हैं उस लिस्ट, 20% वाले, 30% वाले, 40%। तो हमको कभी भी दर्द नहीं होगा, क्योंकि कोई बहुत दुख देंगे बोला ये 10% वाले हैं कोई जा, तो क्या होगा कि हमें फिर हमने ऐसे परसेंटेज में रख दिया ना, तो बाबा कहते हैं 5% तो ऐसे होंगे, लेकिन हमको ये 40, 30, 20 और 10% में रखने का, बहुत ही दर्द देते हैं उसको 10% में रखो। ये व्यक्ति आपको बहुत दर्द देता है तो आप कहो कि कोई बात नहीं है वो 10% वाले हैं, कुछ भी करो लेकिन ऐसे रहेंगे, इसलिए तो अंदर से तकलीफ भी नहीं होगी क्योंकि हमने उसको अरेंज कर दिया है। ओम शांति।